नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत तंदुरुस्त होंगे। कहानी के पिछले भाग में आपको तो याद ही होगा कि मैंने बताया था कि कैसे मैं फ्रांस गई थी वाइन की एक डील के लिए, जहाँ पर मैं स्टीवन नाम के व्यक्ति से मिली थी और कैसे वो मुझे उठाकर अपनी वाइन डिस्टिलरी में ले गया था, जहाँ पर उसने मेरे जिस्म पर वाइन डाल डाल कर मेरे पूरे जिस्म को चाटा था और हमने एक दूसरे को खूब चोदा था। ये कहानी उसके आगे की है। एक दूसरे को खूब चोदने के बाद हम दोनों वहीं पर नंगे पड़े हुए थे। तभी स्टीवन ने अपना फ़ोन उठाया और अपने स्टाफ को कहा कि यहाँ पर आके सफाई कर दे क्योंकि उस वाइन के डिस्टिलरी में चारों तरफ से वाइन ही वाइन बिखरी हुई थी। फ़ोन को रखते ही उसने मुझे नंगा उठाया और एक स्टोर रूम की तरफ ले गया। स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था, परंतु हम उसके बाहर बैठे हुए थे। तभी उसने मेरे पास आके मुझसे पूछा, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें आज का अनुभव। तभी मैंने उसके लंड को छूकर बोला, एकदम शानदार, बिल्कुल तुम्हारी तरह। स्टीवन जानता नहीं था कि हिंदुस्तानी औरतें इतनी गर्म होती हैं और प्यासी होती हैं। अगर उसे ये बात पहले से पता होती तो वो पक्का कोई भी मौका नहीं छोड़ता किसी भी हिंदुस्तानी औरत को चोदने का। हिसाब से चोदने की कला बहुत मायने रखती है, क्योंकि चोदने की कला पर तो कोई भी औरत अपने जिस्म को तुम्हें दे देगी। मैं स्टोर में बाहर उसकी टांगों के बीच बैठ गई थी और उसके सख्त लंड को अपनी चुच्चियों के बीच फंसा कर उसको कड़क करने लगी। फिर उसका लंड अपनी जुबा पर चाट कर खड़ा किया। तभी वो मुझसे बोला कि मुझे अभी भी शांति नहीं मिली है क्योंकि मैंने अभी भी तुम्हारी गांड नहीं मारी है मैंने भी इस पर हंस कर बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे भी अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। जब तक तुम मेरे पूरे शरीर को चूम चूम कर ख़त्म ना कर दो, तब तक मुझे भी कहाँ शांति मिलेगी। अब स्टीवन का कोरा गुलाबी लंड खड़ा हो चुका था। उसने जल्दी से स्टोर का लॉक खोला तो मैं अंदर गई और मैं क्या देखती हूँ दोस्तों, मैं आपको बता ही नहीं सकती। दुनिया का सबसे खूबसूरत बिस्तर, सफ़ेद चादर और पास में जलती हल्की हल्की रोशनी वाली लाइट्स, फूलें, पंखुड़ियाँ ज़मीन पर बिखरी हुई और सबसे महंगी महंगी वाइन, हीटर और इतना रोमांटिक माहौल। तभी वो भी मेरे साथ अंदर आया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इतना रोमांटिक तो मेरे लिए मेरे आज तक किसी भी बॉयफ्रेंड ने नहीं किया था। तभी वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खूबसूरती, जवानी के लिए, ये सब तो कुछ भी नहीं। मैं वो सब देखकर एकदम चुप सी हो गई थी। मैं अपने शब्दों से बयां ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तभी मेरे मुंह से निकला कि ये सब कैसे। तभी उसने मुझे उत्तर दिया कि जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो मैं बीच में उठकर गया था, मुझे याद आया। तभी मैंने बोला, हाँ तुम उठकर करीबन 40 मिनट के लिए गए थे। तभी उसने बोला, हाँ मैंने तभी ये सारी प्लानिंग की। और उसने बताया कि रोजिट मेरी बीवी है, इस कंपनी के सारे फैसले मैं लेता हूँ। रोजिट से बात तो केवल 5 मिनट में ख़त्म हो गई थी। और तुम्हारे हिलते गुलाबी होठों के बीच जब अपना लौड़ा सोचने लगा तो वहाँ बैठ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बाहर आकर पहले मैंने लीजा को चोदा, फिर रोजिट से बात की और सारा इंतज़ाम किया तुम्हारे लिए। वह अपनी वासना के धुन में मुझसे बोलता ही जा रहा था कि ये खूबसूरत शाम, इस शाम में सिर्फ वो मेरे साथ रहना चाहता है और मेरे हर एक पल को स्पेशल बनाना चाहता है, इसलिए उसने ये स्टोर रूम खास मेरे लिए तैयार किया है, वरना तो वो आए दिन बार काउंटर में लड़कियों को चोदते रहता है। तभी एकदम से मैंने पूछा, क्या लीजा को भी उसने हंसकर मुझे बोला, तुम जलो मत, लीजा को तो मैंने इंटरव्यू के दिन ही चोट डाला था। और तभी उसने मुझे बताया कि जब कोई भी लड़की नहीं मिलती तब बेचारी लीजा का नंबर पड़ता है। बस इतना ही कहते हुए स्टीवन ने मुझे पीछे बिस्तर पर गिरा दिया, मेरी दोनों टांगों को हवा में कर दिया और मुझे बोला, औरतों की टांगें हवा में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इतना कहते हुए ही उसने मेरा एक टांग अपने सीने पर रख लिया और दूसरे दाहिने पैर का अंगूठा चूसने लगा। ओह स्टीवन, तुम कमाल के हो। उसने अपने प्यारे हाथों से मेरी टांगों को पकड़ा हुआ था और मेरी चमकती चमड़ी का हर हिस्सा महसूस कर रहा था। तभी एक पैर को चूसने के बाद अब मेरे दूसरे पैर की बारी थी। अब धीरे धीरे वो मेरे दूसरे पैर को चूस रहा था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि एक औरत को संतुष्टि कैसे दी जा सकती है। तभी उसने मेरे दोनों पैरों को चूसने के बाद एक नमस्ते की तरह जोड़ दिए और अपना खड़ा लंज मेरे दोनों पैरों के बीच दे दिया। मैं भी उसका साथ देते हुए अपने पैरों के तलवों से उसका लंज मसलने लगी, हिलाने लगी। वह खड़े खड़े मेरे चुच्चों को ऐसे घूर रहा था जैसे उन्हें खा जाना चाहता हो। भी मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या ख्याल बना रहे हो तुम अपने इस जंगली दिमाग में। तभी उसने उसका जवाब देते हुए मुझे कहा, तुम्हारे चुच्चों को मैं मसल मसल कर लाल कर दूँ, हाँ उनको इतना दबाऊँ कि तुम चीख उठो, तुम्हारे चुच्चों को अपने दांतों से चबा दूँ। पर मैं जंगली होना नहीं चाहता क्योंकि तुम एक प्यार करने की चीज़ हो। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर पूरा पिघल गई और उसके लंड को छोड़ उसको जाके चूमने लगी। और वो भी मुझे किस कर रहा था। किस करने के दौरान उसने धीरे धीरे मुझे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से बिस्तर पर लिटाते हुए वो मेरे ऊपर आ गया। तब तक भी हम एक दूसरे को किस कर ही रहे थे। किस करते करते मेरा एक हाथ उसके लंड की तरफ गया और मैंने उसके लंड को धीरे धीरे रगड़ना शुरू कर दिया। पर उसने मेरा हाथ अपने लंड से हटाकर मेरे सिर के ऊपर कर दिया और दोनों बाहों को कस के पकड़ लिया। अब हम दोनों एक दूसरे के लबों को पी रहे थे। कभी वो मेरे जीभ को चोंटता, कभी मैं उसकी जीभ काटती। इसी दौरान उसने एक ज़ोरदार झटका दिया और अपना लंड मेरे चूत में डाल दिया। आह क्या बताऊँ दोस्तों, उसके लंड की तो बात ही कुछ और थी। जैसे मेरी चूत उसके लंड के लिए ही बनी हुई थी। उसका मजबूत कड़क लंड मेरी चूत की दीवारों से चिपक गया था। उसका चूत मेरी अंदर जाते ही हमारा किस टूट गया और हम दोनों लंबी लंबी सांसें लेते हुए आह आह करने लगे। मेरे अंदर स्टीवन ने जैसे एक मील का पत्थर पार कर लिया था। तभी उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, तुम सिर्फ ऊपर से ही नहीं नीचे से भी बहुत कड़क हो। तुम्हारा तराशा हुआ ये जिस्म, योनि छेद भी चुदाई के लायक है तुम्हारा। इतना सुनते ही मैंने उसे बोला, अगर इतना ही लायक है तो रुक क्यों गए हो। ये सुनते ही उसने अपना लंड पूरा बाहर निकाल कर एक बार फिर से पूरी अंदर धकेल दिया। आह ओहो। और उसने मुझसे पूछा, मज़ा आया। मैंने कहा, अभी कहाँ। उसने फिर से अपना लंड पूरा बाहर निकाला और फिर 2 सेकंड रुक गया, फिर से पूरा अंदर धकेल दिया। आह अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्के लगाने लगा और मैं सिर्फ आह आह ही करती रह गई। उसके गजब के स्टेमिने के सामने तो मैं हार चुकी थी। फिर कुछ देर बाद वो रुक गया और उसने अपना बाहर लंड निकाल लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं तेरी चूत ही नहीं गांठ भी मारना चाहता हूँ। रूम में पड़ी हुई चॉकलेट अब पिघल चुकी थी हीटर के लिए। उसने वो चॉकलेट उठाई और अपनी उंगलियों से मसल कर पिघलाने लगा। फिर वो चॉकलेट वाली उंगलियाँ मेरे मुंह में डालकर मुझे चुसवाने लगा। मुझे नहीं पता कि वो उस समय क्या सोच रहा था। उसने मेरे मुंह से उंगलियां निकालते ही मेरी चूत में घुसा दी और ज़ोर ज़ोर अंदर बाहर करने लगा। तभी उसने मुझे एक वाइन की ग्लास दी और और खुद भी एक वाइन की ग्लास ली। अपनी वाइन की ग्लास उसने तुरंत खाली कर दी और मेरे हाथ से मेरी वाइन की ग्लास ले ली, क्योंकि उसकी तेज़ चलती उंगलियों में मैं डूब सी गई थी। उसने कुछ वाइन मेरे चूत पर डाली और कुछ मेरे चुच्चों पर। अब वो मेरे बूब्स को चूस रहा था और चूत का भोसला अपनी उंगलियों की रफ्तार से बनाने लगा। ओह, इसी दौरान उससे मुझसे बोला कि मेरा शैतानी दिमाग कह रहा है कि ये वाइन की बोतल तेरी गर्म चूत में डालकर उड़ेल दूँ, पर मैं हमारा ये रिश्ता आज ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम आज भी अपनी चुदाई को अरसे तक याद रखो और जब भी फ्रांस आओ तो हम मिले और हमारी चुदाई का दौर यूं ही चलता रहे। उसकी मुझे ज़िंदगी भर चोदने की कल्पना को सोचकर ही मैं उत्तेजित हो गई और धीरे धीरे चढ़ने लगी। और अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि आप लोगों को कहानी सुनाते सुनाते तो मैं खुद गीली हो गई हूँ और अभी मुझे सिर्फ एक सख्त लंड की ज़रूरत है। तो अभी मुझे मौका दीजिए कि मैं फिर से आपको इसके आगे की कहानी सुना सकूँ। बाय।